તારીખ 30/1/1993 શ્રી મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 9.
શ્રી મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક પ્રથમ અધ્યાય પાનો 8મો છે. મંગળાચરણ કરને કા કારણ, આ ઉપરનો પેરેગ્રાફ બાકી છે. इस प्रकार अनंतादिक परम इष्ट मानने योग्य है तथा वे अनंतादिक ही परम मंगल हैं, परम पवित्र है, इसलिए परम मंगल है. उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है. जिसको ऐसे पवित्र आत्माओं के प्रति भक्ति होती है उनका भी दर्शन मोह का अनुभव घटता है, तो उसको भी परम मंगल होता है. स्वरूप को समझ करके ओघ संज्ञा से करे तो उतना लाभ नहीं होवे. उसका स्वरूप समझ करके भक्ति भाव करे तो उसको दर्शन मोह का अनुभव घटता है. शुभ भाव थाय छे, मंद कषाय थाय एटले शुभ भाव थाय छे, पण ए शुभ भाव मां अहम बुद्धि थाय, उस शुभ भाव से लाभ माने तो ग्रीक मिथ्यात होवे, तो बड़ा पाप भी होवे, और स्वरूप समझे तो ऐसा नहीं होवे. पांचों परमेष्टियों का स्वरूप मोहरहित है, वे निर्मोही परमात्मा है. कैसे हैं? कि वे स्वयं निर्मोही परमात्मा है, ऐसा इनका स्वरूप ज्ञान में लेकर भक्ति भाव जिसको आता है, बहुमान आता है, उसको मोह का अनुभाग अवश्य घटता है, तो उसको मंगल कहते हैं. ऐसा मंगल भक्ति करने वाले को भी होता है. मंग अर्थात सुख उसे लाती अर्थात देता है, उसको आत्मिक सुख की प्राप्ति कराता है. अथवा मंग अर्थात पाप उसे गालयती, गल मैंने गालयती अर्थात गाले दूर करे, उसका नाम मंगल है. अपवित्रता को दूर करे, पवित्रता को लावे, दुख को दूर करे और सुख को लावे. मैं मंगल, मंगल का दोनों अर्थ होता है, अस्ति से भी उसका अर्थ सही होता है, नास्ति से भी उसका अर्थ सही होता है, एक ही अर्थ होता है. उसका नाम मंगल है. इस प्रकार ये गुरुदेव दोनों अर्थ करते थे, ये मोक्षमार्ग प्रकाशक वाला ये दोनों अर्थ करते थे. मंगल का मांगलिक करते थे, जो पहले दिन आते थे, कोई भी शहर में प्रवेश करते थे, विहार में या सोनगढ़ में विहार करके प्रवेश करते, तो मांगलिक फरमाते, तो मंगल का यही अर्थ करते थे बार बार. इस प्रकार उनके द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से दोनों कार्यों की सिद्धि होती है. मैंने सुख की और पवित्रता की भी प्राप्ति होती है, और पाप और अपवित्रता के नाश्ति भी होती है. लोग मंगल ऐसा समझते हैं कि अपना संयोग की सुखाकारी हो जाए तो सब आनंद मंगल हो गया, ऐसा नहीं है. मंगल का ऐसा अर्थ नहीं है. इस प्रकार उनके द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से दोनों कार्यों की सिद्धि होती है. इसलिए उनके परम मंगलपना संभव है, इसलिए अरहंत आदि को मंगलपना संभव है। अब इस ग्रंथ का मंगलाचरण क्यों किया, ग्रंथ में मंगलाचरण क्यों ऐसा किया, मंगलाचरण का पद भी लिखा और मंगलाचरण में ये पंच परमेष्टि का बहुमान भी किया और इसका स्वरूप भी दर्शाया, तो क्यों ऐसा किया, ऐसा प्रश्न पंडित जी साहब खुद उठाते हैं। प्रश्न ये जो सारा ग्रंथ है वो प्रश्न उत्तरात्मक है। मैंने ऐसी जिज्ञासा होती है मुमुक्षु को, उसको उत्तर दिया जाता है। कोई कम क्षोभ वाला हो उसको उतना प्रश्न नहीं उठे, इसलिए पंडित जी खुद ये प्रश्न उठाते हैं, संभावित प्रश्न। यहाँ कोई पूछे कि प्रथम ग्रंथ के आदि में मंगल ही किया, सो क्या कारण है, ग्रंथ के शुरुआत में मंगल किया उसका कारण क्या, आपने क्यों मंगल किया, उसका उत्तर कि सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो, पाप के कारण कोई विघ्न न हो, इसलिए यहाँ प्रथम मंगल किया है। मेरी भी भावना ऐसी है कि ये ग्रंथ है वो आदि से अंत तक निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जाए, इसलिए ऐसी भावना से ये मंगल कार्य निर्विघ्न संपन्न हो गए, उस ऐसी भावना से मैंने मंगल किया है। तो यहाँ तर्क उठाते हैं भावना तो तीर्थंकरों की होती है कि सारे जगत को मैं ये मोक्ष का मार्ग जिन मार्ग में ले आऊं, और सारा जगत इस दिव्य ध्वनि से अपनी वाणी से मोक्ष मार्ग में आ जाए, सुखी हो जाए, ऐसी भावना तो तीर्थंकरों की भी थी। एक विकल्प होता है, विकल्प रागात्मक होता है, और राग है सो एक कल्पना है, और कल्पना अनुसार वस्तु का वास्तविक स्वरूप नहीं होता, ऐसी बात है। तीन लोग के नाथ थे लेकिन एक परमाणु का कार्य कर सके ऐसा कोई भी शक्ति नहीं थी, पानी को भी नहीं कर सके, दूसरा जीव का तो कार्य कैसे कर सके, भावना भावना है, यहाँ तर्क है। हाँ, ये आत्म स्वरूप नहीं प्राप्ति नहीं भावना से, भावना बे प्रकार नहीं, ठीक है, स्वयं के बारे में और पर के बारे में दोनों प्रकार की भावना होती है। स्वयं के बारे की जो भावना है वो कभी निष्फल नहीं होती, और पर विषय भावना होती है उसमें तो आत्मा का अधिकार ही नहीं, तो भावना करने वाले खुद जानते हैं कि हमारा कोई अधिकार उसमें नहीं है, ये तो हमारी भावना है, होने वाला है जो कुछ होगा, जो कुछ होने लायक है वो होगा, हम कुछ कर सकते हैं वो बात तो उनके अभिप्राय में भावना के काल में भी नहीं है। हाँ, तीर्थंकर पद मिले, परम सिद्ध पद मिले, ये बीजी बात है, पर भारमा बीजा नु शर्म करी दिए वो नहीं हो सकता। यहाँ तर्क लगाया कि जो अन्यमति इस प्रकार मंगल नहीं करते हैं उनके भी ग्रंथ की समाप्ति तथा विघ्न का न होना देखते हैं, वहां क्या हेतु है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा तर्क लगाते थे, अन्यमति तो ऐसे मंगलाचरण नहीं करते, मैंने पंच परमेष्टि का स्मरण नहीं करते, वो अपना इष्ट देव का स्मरण करते होंगे लेकिन पंच परमेष्टि का नहीं करते, तो उनका भी ग्रंथ तो निर्विघ्न समाप्त होता है,
और आपका तो हुआ भी नहीं उस वक्त तो पता नहीं था खुद को ये समाप्त तो हो जाएगा, उनको ये भावना थी और हो जाएगा ऐसा उसको लगता था, भावना में तो कोई कमी नहीं थी लेकिन होने लायक नहीं था तो नहीं हुआ। इसलिए अच्छी भावना से कोई कार्य होवे ही ये कोई वस्तु स्थिति नहीं है। हमारी भावना अच्छी है इसलिए कार्य होगा ही होगा, होना ही चाहिए, ऐसी कोई वस्तु स्थिति नहीं है। होने लायक नहीं हो तो राग कुछ कर सकता नहीं, ऐसी बात है। उसका समाधान कि अन्य मति जो ग्रंथ करते हैं उसमें मोह के तीव्र उदय से मिथ्यात्व कषाय भावों का पोषण करने वाले विपरीत अर्थों को धरते हैं रखते हैं, इसलिए उसकी निर्विघ्न समाप्ति तो ऐसे मंगल किए बिना ही हो। यदि ऐसे मंगलों से मोहमंद हो जाए तो वैसा विपरीत कार्य कैसे बने उत्तर दूसरा ही दिया है कि अगर वो अरहंतादि का स्मरण करे तो वो विपरीत लिखे ही नहीं, और वो तो मिथ्यात्व और कषाय से बहुत विपरीत सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं और राग वर्धक और द्वेष वर्धक कथानक भी लिखते हैं। रामायण महाभारत की तरह लिया ने, राग वर्धक नहीं है तो उनको तो निर्विघ्न समाप्ति उसकी तो होती है, तो वो मंगल किए बिना ही हो, मंगल करे तो होवे, वो तो मंगल करे तो ऐसा कार्य नहीं होवे, तो वो तो मंगल करते ही नहीं और उसका कार्य भी मंगल रूप है ही नहीं। तथा हम भी ग्रंथ करते हैं उसमें मोह की मंदता के कारण वीतराग तत्व ज्ञान का पोषण करने वाले अर्थ को धरेंगे रखेंगे। हम तो ये ग्रंथ में मोह की मंदता पूर्वक ये रचना करते हैं तो वीतराग तत्व ज्ञान का पोषण मिले या आत्म स्वभाव की रुचि बढ़े, ऐसी बात उसमें लिखेंगे, उस प्रकार की बात करेंगे। हम तो उसकी निर्विघ्न समाप्ति ऐसे मंगल करने से ही हो और उसकी निर्विघ्न समाप्ति ऐसे मंगल करने से हो सकती है, ये भावना का विषय है। यदि ऐसे मंगल न करे तो मोह की तीव्रता रहे तब ऐसा उत्तम कार्य कैसे बने। मंगल करने से मोह की मंदता होती है मंगलाचरण से, मंगलाचरण नहीं करे तो मोह की तीव्रता में अच्छा कार्य कैसे बनेगा, उत्तम कार्य कैसे बनेगा। हाँ, उत्तम कार्य करना हो उसको पहले मोह को मंद करना चाहिए। पुनश्च वह कहता है कि ऐसे तो मानेंगे परंतु कोई ऐसा मंगल नहीं करता उसके भी सुख दिखाई देता है, पाप का उदय नहीं दिखाई देता, और कोई ऐसा मंगल करता है उसके भी सुख नहीं दिखाई देता, पाप का उदय दिखाई देता है, इसलिए पूर्वोक्त मंगलपना कैसे बने। वो वधारे क्रॉस करियो छे कि कोई तो मंगल नहीं करता है फिर भी उसका कार्य सुख से संपन्न होता है, कोई ऐसा मंगल करता है इसका कार्य विघ्न करके पूरा नहीं भी होता है, ऐसा ही हुआ है इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों बनता है। मंगलाचरण करे उसको विघ्न आ जाए और मंगलाचरण नहीं करे उसको निर्विघ्नता हो जाए, ये बात कैसी, ये बात कोई न्याय संपन्न दिखती नहीं है। मैंने पापी जीव है वो सुखी दिखता है संसार में, और जो पुण्य करता है धर्म करता है उसको दुखी भी दिखने में आता है, ऐसा एक इस प्रकार का ये दलील है, तर्क उस प्रकार का है। लोगों को समाधान नहीं होता, संसार में ऐसी बातों का समाधान नहीं होता कि पाप करते हैं, वैसे ये कत्ल खाना चलाते हैं, बहुत पैसा मिलता है उनको, और कोई बिल्कुल इंसान नहीं हुए, और कोई पाप नहीं हुए, कोई नौकरी कर लेवे, कोई ऐसा कर लेवे, कोई मजदूरी कर लेवे, निष्पाप जीवन कर जीवे, उनके पास उतना वैभव नहीं होता। ऐसा क्यों लोग ऐसे दलील करते हैं? भगवान के घर में न्याय नहीं है ऐसा कहते हैं वो लोग। क्या कहते हैं? भगवान न्याय नहीं करता, वो तो ईश्वर करता मानते ना। लेकिन ये सब बात पूर्व कर्म का उदय की होती है, वर्तमान उसमें कोई परिणाम का ये फल नहीं है। वर्तमान परिणाम का फल तो आगे जाके मिलने वाला है। जिसको इस बात का समझ नहीं है उसको समाधान नहीं होगा। उसको कहते हैं, ऐसे जीव को कहते हैं कि जीवों के संकलेश विशुद्ध परिणाम अनेक जाति के हैं। क्या जीवों के पाप के और पुण्य के परिणाम भी अनेक जाति के हैं, असंख्य प्रकार है उसमें। उनके द्वारा अनेक कालों में पहले बंधे हुए कर्म एक काल में उदय आते हैं। ये पूर्व कर्म की देन है। पूर्व में अनेक कालों में जो कर्म बंधन किया था वो कोई एक काल में उदय आता है। इसलिए जिस प्रकार जिसके पूर्व में बहुत धन का संचय हो उसके बिना कमाए भी धन दिखाई देता है, यानी पहले कमाई कर ली, वो अभी कुछ नहीं प्रवृत्ति करता है कमाने की, तो भी उसके पास धन देखने में आता है, और ऋण दिखाई नहीं देता और उनके पर कोई कर्ज दिखाई नहीं देता। तथा जिसके पूर्व में ऋण बहुत हो, यानी जिसने बहुत कर्ज कर लिया हो, उसके धन कमाने पर भी ऋण दिखाई देता है, वो भी कमाता है फिर भी पूरा कर्ज नहीं हटता, वो कर्जदार है और उसके पास धन दिखाई नहीं देता। परंतु विचार करने से कमाना तो धन ही का कारण है, वर्तमान में कमाना वो तो धन प्राप्ति का ही कारण है, और ये ऋण का कारण नहीं है, वो तो कर्जा उतारने का कारण है, कर्जा करने का कारण नहीं है कमाना वो तो। ठीक उसी प्रकार जिसके पूर्व में बहुत पुण्य का बंध हुआ हो उसके यहाँ ऐसे मंगल किए बिना भी सुख दिखाई देता है, अभी पाप करता है फिर भी उनकी नोट इसके पास है तो खर्च करता है, तो वहां उसको पाप का फल दिखने में नहीं आएगा, उसको पाप का उदय दिखाई नहीं देता है। और जिसके पूर्व में बहुत पाप बंद हुआ हो उसके यहाँ ऐसा मंगल करने पर भी सुख दिखाई नहीं देता। पूर्व में पाप किया हो, वर्तमान में उदय आता है, उनको अभी पुण्य भाव हुए तो भी पाप का उदय दिखने में आता है, तो पाप का उदय दिखाई देता है। परंतु विचार करने से ऐसा मंगल तो सुख ही का कारण है, पाप उदय का कारण नहीं है। अभी मंगलाचरण करना ये तो पुण्य का कारण है, पाप का कारण नहीं है, क्योंकि उसमें कसाईबंद होता है। इस प्रकार पूर्वोक्त मंगल का मंगलपना बनता है, इसलिए ये मंगलाचरण किया है वो करने लायक है, हर हालत में वो करने लायक है, इसलिए हमने किया, ऐसा कहते हैं। पुनश्च वो कहता है कि यह भी माना, चलो आपकी वो बात भी मान ली, प्रश्न खुद उठाते हैं उत्तर देते हैं, न्याय संपन्न उत्तर देते हैं तो मान लिया, चलो और हमारा प्रश्न है। परंतु जिन शासन के भक्त देवाधिक है उन्होंने उस मंगल करने वाले की सहायता नहीं की। बहुत जो जिनशासन के भक्त हैं अभी देवलोक में विराजमान हैं, जो सम्यक दृष्टि आदि गए वो तो देवलोक में गए, वो जिनशासन के भक्त थे। तो ऐसे जिन शास्त्र के मंगल करने वाले को उन्होंने मदद क्यों नहीं किया? विघ्न आया, पाप का उदय आया, तो उसने मदद क्यों नहीं किया, उसकी सहायता नहीं की? पर मंगल न करने वाले को दंड भी नहीं दिया। और जो पंच परमेष्टि का मंगल नहीं करते उनको दंड भी नहीं दिया। तो क्या कारण? उसका समाधान, वो उसका उदय नहीं था तो दूसरे को विकल्प भी आएगा नहीं। बात तो वो की वो रहती है, लेकिन एक नया तर्क उठाया, क्योंकि दूसरे तो जिन शासन के भक्त थे उन्होंने क्यों मदद नहीं किया उसको? उनको तो मदद करनी चाहिए थी, साधर्मी को मदद करनी चाहिए, वो क्यों नहीं करते? तो उनका पुण्य का उदय नहीं हो तो दूसरे को मदद करने का भाव विकल्प नहीं आएगा, उसका पुण्य का उदय होगा तो दूसरे को विकल्प निमित रूप से आएगा। उदय को तो खुद का है, दूसरा तो उसमें निमित है। उसका समाधान, जीवों को सुख दुख होने का प्रबल कारण अपना कर्म का उदय है। सुख दुख मैंने यहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता लेना, प्रतिकूलता से संसारी दुखी होता है, अनुकूलता से संसारी सुखी होता है। इसलिए जीवों को, संसारी जीवों को सुख दुख होने का प्रबल कारण, मैंने अनुकूलता प्रतिकूलता होने का प्रबल कारण तो अपना कर्म का उदय है, दूसरा कुछ उसमें नहीं कर सकता, ये सिद्ध करना है। कि किसी को मदद करना का भाव जीव कर सकता, भाव कर सकता है। अगर उनका पुण्य का उदय हो तो उसका भाव अनुसार कोई मदद पहुंचती है, इसका पुण्य का उदय नहीं हो तो भाव होता है, आगे का कोई कार्य नहीं होता है। ऐसा इसलिए कहते हैं कि जिसके पाप का उदय हो उसको सहाय का निमित्त नहीं बनता, उसको सहायिका निमित्त बनता ही नहीं, या तो विकल्प नहीं आएगा, और विकल्प आएगा तो काम नहीं होगा। और जिसके पुण्य का उदय हो उसको दंड का निमित्त नहीं बनता, उसके ऊपर कोई द्वेष करेगा तो भी उसको दंड नहीं होगा, उसका पुण्य का उदय है तो उसको कोई प्रतिकूलता पहुंचा सकता नहीं, और पाप का उदय है तो कोई उसको अनुकूलता भी पहुंचा सकता नहीं है। यह निमित्त कैसे नहीं बनता सो कहते हैं, वो किस प्रकार से नहीं बनता उसका भी थोड़ा और स्पष्टीकरण देते हैं। कि जो देवादिक है वे सूक्ष्म ज्ञान से सबको युगपत नहीं जान सकते। जो देव है, जो सम्यक दृष्टि देव हैं, जो जिन शासन में से पुण्य मानकर देवलोक में गए हैं, उसको भी सूक्ष्म ज्ञान है, उनको भी केवल ज्ञान नहीं है वहां, तो सबको तो युगपत जान नहीं सकते। इसलिए मंगल करने वाले और नहीं मंगल करने वाले का जानपना किसी देवादिक को किसी काल में होता है, किसी को होवे किसी को नहीं भी होवे, विकल्प भी नहीं आवे, तो अवधि ज्ञान से उपयोग लगावे तब जावे, वो भी सूक्ष्म ज्ञान है अवधि ज्ञान। इसलिए यदि उनका जानपना न हो तो कैसे सहाय करे अथवा दंड दे, वो दोनों में से एक भी काम करेगा नहीं, उसको तो ख्याल ही नहीं है, ज्ञान में कोई बात है ही नहीं, उसका उपयोग और जगह लगा है। और जानपना हो, और जानपना हो तब स्वयं को जो अति मंद कषाय हो तो सहाय करने का या दंड देने का परिणाम ही नहीं होते। दंड करने का परिणाम तो तीव्र कषाय का है, लेकिन साय करने का परिणाम भी तीव्र कषाय का है ऐसा बताया। जैसे मुनिराज है यहाँ भावलिंगी संत हो और वो देवलोक में जाते हैं तो उनको वहां इतना मंद कषाय रेवे कि ख्याल आवे कि दूसरा कोई साधर्मी दुखी है तो उनको अति मंद कषाय रहने से उनको सहाय करने का परिणाम नहीं भी आवे तो इनका कोई अपराध नहीं है ऐसी बात है। यहाँ तो सवाल ही नहीं था कि कितने कषाय का अभाव था इसलिए उनको उतना तीव्र कषाय रहता ही नहीं कि दूसरे को सहाय करे पर करे तो आरंभ समारंभ हो जाए तो मुनि को तो आरंभ समारंभ होता नहीं है इसलिए मुनि दशा में नहीं किया लेकिन देवलोक की दशा में तो कभी आ सकता भी है तो उसका कोई भूमिका का दोष नहीं है। फिर भी वहां भी मंद कषाय अधिक रहे तो नहीं करे उनको सहाय नहीं करे दंड नहीं दे ऐसा भी हो सकता है। तो सम्यक दृष्टि होवे और दूसरे साधर्मी को मदद करे ही करे ऐसा होता नहीं है नहीं भी करे अति मंद कषाय के बस नहीं भी करे उतना तीव्र कषाय नहीं हो ऐसी बात है वो। अभी ये तो अपना भी एक बात का स्मरण कर सकते हैं वो बहुत अच्छा बढ़िया दृष्टांत है कि वो श्रीमद जी कभी पत्र नहीं लिखते थे साधर्मी जीवों का मुमुक्षुओं को जिज्ञासा रूप पत्र आता तो उत्तर नहीं दे पाते थे और लिखते थे कि हमारी कोई दशा ऐसी चल रही है कि जिस कारण से हमारी पत्र लिखने की बाह्य वृत्ति काम नहीं कर सकती हम चाहें तो भी कर नहीं सकते हमारी वृत्ति लिखते लिखते टूट जाती है कभी तो ये वृत्ति उठती ही नहीं पर कभी लिखते लिखते टूट जाती है तो हम पत्र अधूरा छोड़ देते हैं और कभी आधा पत्र लिखा है तो 15 दिन तक उसका फिर पूरा करने का विकल्प नहीं आवे ऐसा हो जाता था। तो हमें क्षमा कर देना सज्जनता बहुत थी तो ये अपराध के लायक वृत्ति नहीं थी लिखते हैं फिर भी ये अपराध के योग्य नहीं है लेकिन आपको तो मुमुक्षुता में जो सहायता और मदद पहुंचती है और मार्ग मिलने में जो निमित्त होता है वो नहीं मिल रहा है मैं अच्छी तरह जानता हूं इसलिए आपको तो प्रतिकूलता होती है इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं तो माफी मांग लेते थे। महापुरुष होते हुए भी वो सामान्य मुमुक्षु के प्रति माफी का लिखित माफी मांगते थे क्या लिखित माफी मांगते थे ऐसी बहुत लोकोत्तर सज्जनता उसको कहते हैं क्या उसको लोकोत्तर सज्जनता कहते हैं ऐसा बनता है। सम्यक दृष्टि को भी कभी ऐसा बनता है कि अधिक मंद कषाय रहने से दूसरों को सहाय करने का विकल्प नहीं आता दया का विकल्प नहीं आता ऐसा बन जाता है। व्यंतर तो था ही नहीं सम्यक दृष्टि तो व्यंतर था ही नहीं मिथ्या दृष्टि था तो सामान्य पुण्य नो उदय हो तो एने कोई वक्त मदद करवानो विकल्प आवे ने सामान्य पाप नो उदय हो तो एने हैरान करवानो पण विकल्प आवे तो तिखड़ी छे। व्यंतर देवों की प्रकृति तिखड़ी होती है तो ज्यादा करके तो दूसरों को नुकसान ही करता है क्या दूसरों को परेशान करने का ही उसको भाव आता है। जैसे बच्चे लोग तिखड़े होते हैं वो क्या करेगा कुत्ते को थोड़ा पत्थर मारेगा बंदर होता उसको पत्थर मारेगा तो उनको क्या है का आनंद आता है वो भक्ता है तो उसको आनंद आता है ऐसे उनको भी टिकल स्वभाव है, तो थोड़ा दूसरों को भाई भाई जो भाई प्रकृति वाले हैं उसको भाई होए ऐसा उनको दिखा देता करता है तो अधिक भयवान होता है, तो उनको मजा आती है, आनंद आता है। ठीक ऐसा मुख्य कार्य तो व्यंतर देवों का ऐसा ही होता है, मदद करने का बहुत कम है। क्या कहते हैं, और जानपना हो तब स्वयं को जो अति मंद कषाय हो तो सहाय करने का या दंड देने के परिणाम ही नहीं होते। अति मंद कषाय वश दोनों प्रकार के परिणाम नहीं होते, तथा तीव्र कषाय हो तो धर्मानुराग नहीं हो सकता, और तीव्र कषाय में तो धर्म का अनुराग नहीं हो सकता। धर्म का धर्म अधर्म रूप कर्तव्य जाने तब कोई देवादि किसी धर्मात्मा की सहाय करते हैं अथवा किसी अधर्मी को दंड भी देते हैं। क्या होता है कि ऐसे मध्यम कषाय का परिणाम होने से कोई देव है वो धर्मी को अनुकूलता का भी सहायता भी पहुंचाते हैं, उनका उसको उदय ऐसा है, और किसी अधर्मी को पाप का उदय हो तो उसको दंड भी देते हैं। ऐसा होता है कि ये जिन शासन का नुकसान करता है, शासन को नुकसान करता है तो उसको दंड भी देता है। हाँ, उसका पाप का उदय हो तो, उसका पाप का उदय नहीं हो तो शासन को नुकसान हो जाए लेकिन उसको कुछ कर सकते नहीं, ऐसा भी बनता है। जिन मंदिर को तोड़ते हैं, प्रतिमा को तोड़ते हैं, शास्त्र को जलाते हैं, सब करते हैं। इस प्रकार कार्य होने का कुछ नियम तो है नहीं, ऐसा होना ही चाहिए ऐसा नियम नहीं है, ये इस प्रकार का जो बताया ऐसा नियम है, लेकिन ऐसा ही होवे ऐसा नियम नहीं है, ऐसे समाधान किया। यहाँ इतना जानना कि सुख होने की, दुख न होने की, सहाय कराने की और दुख दिलाने की जो इच्छा है सो कषायमय है। इच्छा है वो दोनों प्रकार की इच्छा, राग भी कषायमय है और द्वेष भी कषायमय परिणाम है। तत्काल तथा आगामी काल में दुखदायक है, उस काल में भी आकुलता होती है और इससे जो कर्म बनता है वो भी आकुलता के ही कारण होते हैं। तत्काल और आगामी काल में दुखदायक है, इसलिए ऐसी इच्छा को छोड़कर हमने तो एक वितराग विशेष ज्ञान होने के अर्थी होकर अरंत आदि को नमस्कार आदि रूप मंगल किया है। देखो हमने ऐसा कषाय बढ़ाने के लिए मंगल नहीं किया है, हमने तो वितराग विज्ञान की प्राप्ति का हेतु है। हमारी भावना तो मंगलाचरण करने में हमारा स्वभाव को प्रकट करने की भावना है, वितराग विज्ञान मैंने हमारा स्वभाव को प्रकट करने की भावना है, हमको कोई कषाय की या पुण्य पुण्य के फल की कोई भावना नहीं है। तो हमारा जो ग्रंथ पूरा करने का जो भाव था एक विकल्प या, लेकिन वो मूल प्रयोजन नहीं है। ग्रंथ बनाना और पूरा हुए वो कोई हमारा मूल प्रयोजन नहीं है, हमारा मूल प्रयोजन तो वितराग विज्ञान की प्राप्ति करने का है। इसलिए वितराग विशेष ज्ञान होने के अर्थी होकर अरंत आदि को नमस्कार आदि रूप मंगल किया है, इसलिए सभी मुमुक्षुओं को भी अपना स्वभाव की प्राप्ति की भावना, स्वरूप प्राप्ति की भावना से दर्शन पूजना शास्त्र स्वाध्याय आदि करना चाहिए, पुण्य बंधन होवे इस कारण से नहीं। इस प्रकार मंगलाचरण करके अब सार्थक मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ का उद्योत करते हैं। अब ये ग्रंथ का नाम जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, ये मोक्ष मार्ग को प्रकाशन करने में सार्थक है। हमने मोक्ष मार्ग पाया है और हमने जो मोक्ष मार्ग प्राप्त किया है वो कैसे किया है, कैसे मोक्ष मार्ग प्राप्त कर सकते हैं, उसका प्रकाश हम करेंगे इस ग्रंथ में, इसका प्रकाश करेंगे, इसलिए इस ग्रंथ का नाम सार्थक है। जैसा नाम है वैसा ही गुण है, जैसा नाम हो वैसा गुण होने से उसको सार्थक कहने में आता है। अपन भी सभी ग्रंथ के जो नाम रखते हैं वो उनके विषय अनुसार सार्थक नाम ही रखते हैं, ऐसी परिपाटी है उसमें। तो कहते हैं कि इस प्रकार मंगलाचरण करके अब सार्थक मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ का उद्योत करते हैं। वहां यह ग्रंथ प्रमाण है ऐसी प्रतीति कराने के हेतु पूर्व अनुसार का स्वरूप निरूपण करते हैं। क्या कहते हैं कि यह ग्रंथ प्रमाण है। प्रमाण मैंने क्या है कि उसमें कोई अप्रमाणिक बात हमने नहीं लिखी है, सब बात न्याय संपन्न है, सब बात निर्दोष लिखी है हमने। ऐसी प्रतीति मैंने खात्री कराने के हेतु पूर्व अनुसार स्वरूप निरूपण करते हैं। तो इसका खात्री कराने के हेतु कुछ बात हम यहाँ लिखेंगे कि इस ग्रंथ क्यों प्रमाणिक है और इसका स्वाध्याय क्यों करना चाहिए, इसके कारण थोड़ी बात और स्पष्ट करते हैं। ग्रंथ की प्रमाणिकता और आगम परंपरा। ओकार आदि अक्षर हैं वे अनादि निधन है, किसी से किए हुए नहीं है। तो पहले तो कहते हैं कि ये जो हम लिखेंगे इसमें ये तो अनादि निधन जो अक्षर है वही का काम है, इसमें हमारा कर्तृत्व कोई नहीं है। चलो शुरू से वो बात करते हैं। मैंने हम कर्ता हो करके मिथ्यात्व में कर्ता हो करके जो ग्रंथ बनाते हैं उस प्रकार से यह ग्रंथ हम रचना करते नहीं है। देखो बिन हो गए पहले से ही, ग्रंथ रचने का विकल्प है ग्रंथ रचना करने का, फिर भी उसमें हमारा कर्तृत्व कुछ नहीं है, वो तो अनादि निधन है। सब अक्षर है वो ओ, मैंने ओ आ ई ऐसा करके जो भी पूरा कक्का बारा खड़ी अल्फाबेटिक होता है वो पूरा का पूरा अनादि निधन है। अकार आदि अक्षर हैं जो सब में पहले अ आएगा, सब भाषा में पहले अ लिया है, गुजराती में अ आ है, संस्कृत में वो है, हिंदी में वो है, इंग्लिश में ए है और उर्दू में अलीफ, उर्दू में जो है उबाली का थोड़ा त्रासा होता है उसको अलिफ कहते हैं, उसका अर्थ है ए, अलिफ मैंने ए, तो सब में पहले ए लिया है। देखो कैसे चलिए भाषा। अकार आदि अक्षर हैं वे अनादि निधन हैं, किसी के किए हुए नहीं है, वो किसी ने नहीं बनाए। इनका आकार लिखना तो अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार है। तो अक्षर तो अनादि निधन है लेकिन आकार भिन्न भिन्न है। कोई अंग्रेजी में ऐसे करते हैं उसमें भी चार अल्फाबेट है, चार प्रकार के ये होते हैं, ऐसे होते ऐसे होते ऐसे होते, हिंदी में ऐसे होते, गुजराती में ऐसे होते, उर्दू में ऐसे होते। तो उसका आकार इच्छा अनुसार अलग अलग होता है लेकिन ए है वो शब्द तो अनादि निधन है। कितना माइन्यूट बारीक अवलोकन है एक एक बात पर, बहुत तीव्र सूक्ष्म बहुत था ना, बहुत बारीक अवलोकन है। अकार आदि अक्षर तो अनादि निधन है, इनका आकार लिखना तो अपनी इच्छा के अनुसार, अनेक प्रकार है, इसका आकार एक आकार अनेक प्रकार अपनी इच्छा अनुसार सब लिखते हैं, परंतु जो अक्षर बोलने में आते हैं वे तो सर्वत्र सर्वदा ऐसे ही प्रवर्तते हैं, बोलने में कोई फर्क नहीं है। ए को ए ही बोलना पड़ेगा, उसको कोई ए को बे ऐसा नहीं बोल सकते, ए को के नहीं बोल सकते, ए को ए ही बोलना पड़ेगा सबको। लिखने में अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी लिखे, बोलने में कोई अक्षर में फर्क पड़ सकता नहीं है, और अक्षर है वो तो शब्दात्मक है, लिखना दूसरी बात है और शब्द होना दूसरी बात है। ये जो लिखते हैं शब्द उसमें आवाज नहीं है, और बोलने में जो शब्द है उसमें आवाज है, ये शब्द की सही पर्याय है, जो आवाज है वो शब्द की सही पर्याय है, लिखते हैं वो शब्द की सही पर्याय नहीं है क्योंकि उसमें आवाज नहीं है ना, इसलिए तो उसको उसके निमित्त फल स्वरूप है, वो लिखने में आता है वो तो बोलने का फल स्वरूप है। इसलिए कहा है कि सिद्धो वर्ण समामनाय, इसका अर्थ यह है कि जो अक्षरों का संप्रदाय है सो स्वयं सिद्ध है, तथा उनका अक्षरों से उत्पन्न सत्यार्थ के प्रकाशक पद उनके समूह का नाम सूत्र है। पहले तो ये सूत्र है, इसलिए एक सूत्र कहा है कि सिद्धो वर्ण समामनाय, सिद्धो वर्ण, वर्ण मैंने शब्द, यहाँ वर्ण शब्द की जो प्राप्ति है वो तो स्वयं सिद्ध, अक्षरों का जो संप्रदाय है समूह है वो तो स्वयं सिद्ध है, अ ब क ऐसा जो जो भी अक्षर बोलने में आवाज आता है वो तो अनादि निधन, किसी का बना हुआ नहीं है, वो अक्षरों का संप्रदाय तो स्वयं सिद्ध है, वो अनादि निधन है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, तथा उन अक्षरों से उत्पन्न, अभी ऐसे अक्षरों से उत्पन्न सत्य अर्थ के प्रकाशक, क्या ऐसे अक्षरों से उत्पन्न सत्य अर्थ के प्रकाशक जो पद होते हैं, मैंने शब्द बनते हैं, उनके समूह का नाम श्रुत है। ऐसे जो पद है शब्द है उनके बहुत समूह होता है, उसको द्रव्य श्रुत कहने में आता है, उसको श्रुत कहते हैं। कहां से बात उठाई, एक शास्त्र रचना करते हैं तो अनादि निधन शब्द है, वहां से वो बात उठाई, उसका मूल पकड़ा है, ये अक्षर शब्द पद कहां से बने, श्रुत कहां से उत्पन्न हुआ, ये तो श्रुत है ना, शास्त्र है वो श्रुत है, तो श्रुत कहां से उत्पन्न हुआ, उसका मूल कहां है वो बता दिया। त्यां सिद्धो वर्ण समामनाय, यहां से शुरू करें इस पहले से अभिमान नहीं हुए, क्या ये मैंने शब्द बनाया, मैंने वाक्य बनाया, मैंने काव्य बनाया, मैंने ग्रंथ बनाया, ये अभिमान किसी को हुआ ही नहीं, क्योंकि सिद्धो वर्ण समामनाय वो तो शुरू से अनादि से है, मैं क्या बनाता उसको, ऐसा उन अक्षरों से उत्पन्न सत्यार्थ प्रकाशक पद उनके समूह का नाम श्रुत है, सो भी अनादि निधन है, और ऐसा श्रुत भी अनादि निधन है, अनादि से ये शब्दों वाक्य रचना ग्रंथों अनादि से होते रहते हैं। ऐसे अब कहते हैं कि जीव ऐसा अनादि निधन पद है, दो अक्षर से बना हुआ पद है वो शब्द, तो जीव भी अनादि निधन पद है ना, आ तो पाठशाला में समझाने लायक बात है सबको, शुरू से कैसे श्रुत हुआ, कैसे हुआ, अनादि निधन क्या है, जैसे कि ऐसे जीव ऐसा अनादि निधन पद है, सो जीव को बतलाने वाला है, वो शब्द क्या बताता है, जीव को बतलाता है, शब्द है वाचक है, और इसका वाच्य कोई पदार्थ होता है, तो जीव शब्द वाचक है और इसका वाच्य जीव नाम का पदार्थ है, मैंने जीव से जीव को बतलाने वाला है। हाँ, जीव वाच्य अनादि है तो वाचक भी अनादि है, जीव पदार्थ अनादि से है तो उसका बतलाने वाला शब्द वाचक भी अनादि निधन है। न कभी वो उत्पन्न नया किया है, न इसका नाश भी होने वाला है, ऐसा अनादि निधन। इस प्रकार अपने अपने सत्य अर्थ के प्रकाशक अनेक पद, उनका जो समुदाय सुश्रुत जानना, अपने अपने सत्य अर्थ के प्रकाशक वाचक, वाचिका जो वाचक है उसका जो पद है, शब्द है, उसके जो समुदाय है, उसका समूह है, उसको श्रुत कहने में आता है। पुनश्च जिस प्रकार मोती तो स्वयं सिद्ध है, उसमें कोई थोड़े मोतियों का और कोई बहुत मोतियों का और कोई किसी प्रकार और किसको किसी प्रकार गुंथकार गहना बनाते हैं अलंकार, मोती स्वयं सिद्ध है और इसकी माला बनाते हैं, इसके अनेक प्रकार के आभूषण बनते हैं, बहुत प्रकार के, कान में पहनने का, नाक में पहनने का, गला में पहनने का, वो बंग हाथ में पहनने का, सब बनाते हैं मोती का। तो ये तो बनाने वाले मतलब बनाते हैं, लेकिन मोती कोई बनाते नहीं है, ये ओरिजिनल मोती की बात है, ये अभी कल्चर की बात नहीं है। जो मूल मोती बनता है कुदरत के घर से, वो समुद्र में बनता है ना, छीप में, ये मोती तो स्वयं बनता है, स्वयं सिद्ध है। उनमें से कोई थोड़ो मोतियों का अलंकार बनता है, कोई ज्यादा मोती का बनता है, कोई किस प्रकार का बनता है, कोई किस प्रकार का बनता है। उसी प्रकार पद तो स्वयं सिद्ध है, जो पद है वो तो स्वयं सिद्ध है, जो भी पदार्थ हैं उनके कहने वाले वाचक पद तो स्वयं सिद्ध है, उसमें कोई थोड़े पदों को और कोई बहुत पदों को, कोई किसी प्रकार से और कोई किसी प्रकार से, उसको गुंथ गुंथ कर ग्रंथ बनाते हैं, कोई ज्यादा पद का ग्रंथ बनाते हैं, कोई थोड़े पद का बनाते हैं, कोई काव्यात्मक बनाते हैं, पद्यात्मक बनाते हैं, कोई गद्यात्मक बनाते हैं, ऐसा अनेक प्रकार से ग्रंथ बनते हैं। यहाँ मैं भी उस सत्यार्थ पदों को मेरी बुद्धि अनुसार गुंथ कर ग्रंथ बनाता जितना मेरा क्षोभ है, सत्यार्थ पदों को गुंथ गुंथ कर मैं भी ग्रंथ बनाऊंगा। मेरी मति से कल्पित झूठे अर्थ के सूचक पद उसमें नहीं गुंथता हूँ, मेरी ऐसी मति नहीं है कि मैं कल्पित या झूठे अर्थ को बताने वाले ऐसे कोई पद को इस ग्रंथ में रचना करूंगा, ऐसा मैं करने वाला नहीं हूँ। ये अपना अभिप्राय बताया, अपनी नियत जो है वो साफ है, मेरी नियत साफ है, मैं ग्रंथ रचना करूंगा, वो मैं आत्मा को हितकारक होगी वही बात लिखूंगा, चाहे वो विधि की हो चाहे निषेध की हो, लेकिन जो बात मैं कहूंगा वो आत्मा को हितकारक होगी, आत्मा को हितकारक होगी नहीं, ऐसा कहते हैं। क्या उद्देश्य है कि सभी धर्मात्मा हो, मुनिराज हो या आचार्य हो, जो भी ग्रंथ बनाते हो वो स्व पर हितकारक प्रवृत्ति करते हैं, वो स्व पर अहितकारक प्रवृत्ति कभी करते नहीं है ग्रंथ रचना में, ये खास बात है, ये मूल आशय है, ये अपने अपना हित किया है और ये हित कैसा कर सकते हैं, ये हित में बाधक कौन है, साधक कौन है, ये सभी बात आएगी। इसलिए उसका आशय है वो निर्दोष है, प्रमाणिक है, साफ है और पवित्र है, आशय है वो पवित्र है। इसलिए यह ग्रंथ प्रमाण जानना, इसलिए ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का जो ग्रंथ है वो अब इसके नाम के अनुसार एक प्रमाणिक ग्रंथ जानना। और कृपालु देव ने सत्सुत में उसका नाम दिया है। प्रश्न, और कई मुमुक्षुओं को ये ग्रंथ पढ़ने का सूचना भी किया है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक तुम पढ़ना, किसी को भेजा भी है। प्रश्न, उन पदों की परंपरा इस ग्रंथ पर्यंत किस प्रकार प्रवर्तमान है? वो कहते हैं कि आप कहते हैं कि अनादि से ये पद बने हुए हैं, तो आपके ग्रंथ तक इसकी परंपरा कैसे आई? क्या वो खुद बात कुछ खोलना चाहते हैं? वो अपने जो ग्रंथ लिखते हैं वो स्वयं के रचना में प्रमाणिकता को अधिक पुष्टि देने का के कारण ये प्रश्न खुद ने उठाया है कि अनादि जो पदों की परंपरा है वो सही परंपरा आपके ग्रंथ में आई कहां से? तो इसका स्पष्टीकरण हम प्रश्न उठा करके देते हैं। समाधान के अनादि से तीर्थंकर केवली होते आए हैं, क्या है? अनादि से कोई ऐसा काल नहीं हुआ कि पहला तीर्थंकर और पहला केवली हुआ हो, ऐसा कोई काल नहीं है। कितने हुए? अनंत तीर्थंकर हो गए। अभी तो लोगों की, जैनियों की इस जानकारी इतनी कम है कि कोई 25वां तीर्थंकर का नाम पड़ता है ना तो भड़कते हैं, और कोई भड़काते भी है, गुमराह करते हैं। 25वां तीर्थंकर की बात कैसे चलेगी? 25, अरे भैया अनंत तीर्थंकर हो गए, 25 क्या? अनंत हो गए और अनंत होंगे। एक 24 में 24 होता है, 25 नहीं होता है, लेकिन महाविदे में तो हमेशा हमेशा हुआ ही करते हैं। वहां तो कभी तीर्थंकर की कोई मर्यादा नहीं, एक साथ कम से कम 20 और एक साथ ज्यादा से ज्यादा 160, वो एक साथ की मर्यादा है। लेकिन वहां तो कितने भी हुए हुआ ही करते हैं, एक गए तो दूसरे आई जाते हैं। और इस भरत क्षेत्र में 24 में मैंने तो चतुर्थ काल में, हर चतुर्थ काल में 6 आ रहा है, उसमें हर चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। पंचम काल में, छठे काल में, पहले काल में, दूसरे काल में, तीसरे काल में कोई तीर्थंकर नहीं होते हैं। उसमें 25वां एक चतुर्थ काल में नहीं होते, दूसरे काल में दूसरे 24 होने वाले हैं। ऐसे अनादि से तीर्थंकर केवली होते आए हैं, उनको सर्व का ज्ञान होता है। वो तीर्थंकर केवली को पूरा ज्ञान होता है, सर्व का ज्ञान होता है मतलब पूरा ज्ञान होता है। इसलिए उन पदों का तथा उनके अर्थों का भी ज्ञान होता है। तीर्थंकरों को सभी भाषा का पूरा, सभी शब्दों का पूरा ज्ञान होता है, सभी शब्दों के पदों के अर्थों का भी पूरा पूरा ज्ञान होता है। उनकी दिव्य ध्वनि ओमकार नाद है, उसमें 700 महाभाषा, 700 तो महाभाषा, और फिर गौण रूप से तो सब भाषा उसमें। कोई ऐसा प्राणी नहीं हो, तीन जाति में से, तीन गति में से आते हैं, देव मनुष्य नारक, देव मनुष्य तिरियंश, तीन गति में से आते हैं। सब भाषा में अपन समझ जावे, अपनी अपनी भाषा में समझ जावे। गाय है वो अपनी भाषा में समझे, कौवा है वो अपनी भाषा में समझे, सिंह है वो अपनी भाषा में समझे, सब अपनी अपनी भाषा में समझे। उनको सर्व का ज्ञान होता है, इसलिए उन पदों का तथा उनके अर्थों का भी ज्ञान होता है। पुनश्च उन तीर्थंकर केवलियों का दिव्य ध्वनि द्वारा ऐसा उपदेश होता है जिससे अन्य जीवों को पदों का एवं अर्थों का ज्ञान होता है और उनके निमित्त से जो दिव्य ध्वनि छूटती है उससे दूसरे जीवों को भी शब्दों का और अर्थों का ज्ञान होता है। उसके अनुसार गणधर देव अंग प्रकीर्ण रूप ग्रंथ गूंथते हैं और इस दिव्य ध्वनि के अनुसार पहले सबसे पहले गणधर देव ग्रंथ रचना करते हैं तथा उनके अनुसार अन्य अन्य आचार्य आदि नाना प्रकार ग्रंथ आदि की भी रचना करते हैं। फिर गणधर के बाद दूसरे दूसरे आचार्य हो, उपाध्याय हो, मुनि हो, ज्ञानी हो, सब रचना करते हैं। उनका कोई अभ्यास करते हैं, रचना भी करते हैं, उनका दूसरे लोग अभ्यास करते हैं, कोई उनको कहते हैं और कोई सुनते हैं। इस प्रकार परंपरा मार्ग चला जाता है। इस प्रकार जो मूल चित्त तीर्थंकर देव का मार्ग है वो परंपरा चालू रहता है, उस प्रकार से चालू रहता है। तो कहेंगे कि अभी ये कैसे चालू रहा है और इस मार्ग अनुसार मैं कैसे मोक्ष मार्ग का प्रकाश करूंगा, वो बात की संधि करने के लिए
प्रार्थना।